بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چیپٹر اس چیز کے متعلق ہے جسے ہم سب جانتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں, اور یہیں سے ہی ہماری پیدائش بھی ہوئی ہے, یعنی کہ زمین. لیکن زمین آخر کہتے کسے ہیں؟ زمین ایکچولی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خشک اور سخت مٹی جس پر قدم رکھ کر کھڑے ہوا جا سکے. لیکن زمین تو ایک بڑا ہی سادہ سا لفظ ہے روزمرہ کی زبان کا. در حقیقت جس سخت زمین پر ہم رہتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں, یا جو زمین ہمیں ہزاروں میل دور اپنے نیچے پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کی تعریف اس سے کہیں کہیں زیادہ ہے. ٹیکنیکل زبان میں یہ زمین ایک مجموعہ ہے کچھ معدنیات کا, کچھ گیسز کا, کچھ لیکوڈز کا, اور ایک ایسی چیز کا کہ جس کے بغیر میں اور آپ کبھی بھی یہاں نہ ہوتے, یعنی کہ وہ مادے جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں تھی, اور انہیں سائنس کی زبان میں آرگینک میٹر کہتے ہیں. لیکن آرگینک میٹر کے بارے میں تو میں آپ کو تھوڑا بعد میں بتاؤں گا, اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ زمین کے متعلق وہ باتیں جان لیں جن پر بہت کم ہی غور کیا جاتا ہے. دنیا کی زبانوں میں ویسے تو زمین کے بہت سے نام ہیں, لیکن اس کا ایک نام ایسا ہے جس کی جھلک آپ کو تقریباً ہر زبان میں نظر آتی ہے, اور وہ ہے عربی لفظ ارض اور اس کی مختلف ویریشنز. اب چاہے انگلش میں وہ ارتھ کہلائے, جرمن میں ایرڈا, ڈچ میں آردا, نارویجن میں یوردا, یدش میں ایردا, اور ڈینش میں یوردن. اب ان ساتوں پرانی زبانوں میں ارتھ کا لفظ بھی ملتا جلتا ہے, اور اس کی تعریف بھی ایک ہی جیسی ہے, چلنے کے قابل ہر وہ حصہ جو ہوا اور پانی سے الگ ہو وہ ارتھ ہے, زمین ہے. لیکن ایک اور اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ یہ ارتھ کہاں تک پھیلی ہوئی ہے؟ پاکستان, سعودی عرب, انڈیا, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, انگلینڈ, کیا بس یہی ارض ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں قسم اٹھا رہے ہیں کہ قسم ہے ارض اور اس کے پھیلا دیے جانے کی, تو کیا اللہ تعالیٰ بس ان چھوٹے بڑے 195 ممالک کی قسم اٹھا رہے ہیں؟ جس ارض پر اس وقت میں اور آپ رہ رہے ہیں, اس کی 90% چٹانیں بیسالٹ سے بنی ہوئی ہیں. بیسالٹ دراصل ایک پتھریلا سا ایلیمنٹ ہے جسے جیسے گرینائٹ یا سنگ مرمر وغیرہ ہوتا ہے. اب اگر اس ارض کی 90% چٹانیں بیسالٹ کی بنی ہوئی ہیں, تو چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ارض بیسالٹ ہی کا دوسرا نام ہے. اب مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے رات کے وقت 14 کا چاند بھی دیکھا ہوگا, لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس پر نظر آنے والے یہ کالے دھبے کیا ہیں؟ چاند کے ان کالے دھبوں کو لونر ماریا کہتے ہیں, اور یہ دھبے دراصل اسی بیسالٹ کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلے ہوئے میدان ہیں, وہی بیسالٹ کے جو ہماری ارض میں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ٹیکنیکلی چاند کی زمین بھی ارض ہی کہلائے گی. چاند کے علاوہ بھی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں فجر اور مغرب کے وقت ایک بہت چمکدار سا ستارہ نظر آتا ہے, جو ایکچولی ایک ستارہ نہیں ہے بلکہ ایک سیارہ ہے جسے وینس کہتے ہیں. 70s اور 80s میں رشیا نے اس سیارے یعنی کہ اس پلانٹ پر 5 وینیرا مشنز بھیجے تھے, اور پتہ یہ چلا کہ اس سیارے پر درجنوں کلومیٹر موٹے بادلوں کی ایک تہ ہے جس کے نیچے 80% وینس اسی بیسالٹ کا بنا ہوا ہے, جس بیسالٹ کی ہماری اپنی زمین ہے, یعنی کہ ٹیکنیکلی وینس بھی ارض ہی کا حصہ ہے, بادلوں سے ڈھکی ہوئی ایک ارض. مریخ جس پر اس چیپٹر کے سنائے جانے یا لکھے جانے کے وقت 50th مشن جا رہا ہے, وہ بھی ارض کی تعریف پر پورا اترتا ہے. بلکہ اگر ہماری اور مریخ کی ارض دیکھی جائیں تو ہمارے درمیان فرق صرف پانی اور آرگینک میٹر کا ہے. ہماری ارض پر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں جبکہ مریخ پر نہیں ہے. آپ جوپیٹر کے متعلق بھی جانتے ہوں گے, یہ ہمارے سورج کے سسٹم کا سب سے بڑا اور ایک بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے, سیارہ ہے جس پر ہر وقت طوفان چلتے رہتے ہیں. رات کے وقت ہمارے آسمان پر صرف ایک ہی چاند طلوع ہوتا ہے, جبکہ جوپیٹر کے آسمان پر 79 چاند طلوع ہوتے ہیں, اور سب کے سب ارتھ کی تاریخ پر پورے اترتے ہیں. چلیں میں آپ کو سورج کے سسٹم سے ہی باہر لے جاتا ہوں. اب تک 4984 ایسے سسٹمز اور زمینیں مل چکی ہیں کہ جو ارض کی بنی ہوئی ہے, جنہیں نام بھی دیے جا چکے ہیں, اور ابھی 6590 مزید ایسے حصے نظر آ رہے ہیں کہ جو اسی ارض کے بنے ہوئے ہیں, لیکن ابھی انہیں نام دینا باقی ہے. अर्थ के इन हिस्सों में से कोई हिस्सा हमसे बहुत छोटा है और कोई हमसे बिल्कुल मिलता जुलता है। बल्कि शायद आपको याद होगा कि 2014 में केपलर 186F के नाम से एक अर्थ मिली थी, बिल्कुल हमारी अपनी ज़मीन जैसी, हमारी दुनिया जैसी, हमारी अपनी अर्थ जैसी। लेकिन अर्थ का कोई हिस्सा हमसे हौलनाक हद तक बड़ा भी है, मसलन HD 100546, अर्थ का एक ऐसा हिस्सा जो तकरीबन हमारे सूरज जितना बड़ा है। अर्थ के इन दूसरे हिस्सों के मुतल्लिक पहली मरतबा 1990 में पता चला था, 1990 में। लेकिन तब से लेकर अब तक हर 27 महीने बाद ये तादाद दुगनी होती चली जा रही है। खुदाई बेहतर जानते हैं कि ये अर्थ इस कायनात में कहां कहां तक फैली हुई है। अब आपको एहसास हुआ कि एक कसम है अर्थ और इसको फैला दिए जाने की एक्चुअली कितनी बड़ी कसम है। जब जब अर्थ में से निकलने, अर्थ में जाने और अर्थ के मुतल्लिक कोई भी बात होगी, वो अर्थ इस पूरी कायनात में कहीं भी और किसी भी कोने में मौजूद हो सकती है। यही वो अर्थ थी जिसे सूरह अंबिया के मुताबिक आसमानों से अलहदा किया गया था, जो सूरह बकरा के मुताबिक आसमानों से पहले शक्ल में आई थी, सूरह बकरा के मुताबिक इसकी तख्लीक आसमानों से पहले हुई थी, जिसे हामिम सजदा के मुताबिक 2 दिन में तख्लीक किया गया था, फिर जिसे वन नाजियात के मुताबिक चारों तरफ फैला दिया गया था, और फिर जिसमें हामिम सजदा के मुताबिक पहाड़ों को रखा गया था, वो पहाड़ जो हर अर्ध में मौजूद है, अर्ध के हर हिस्से में मौजूद है। इनफैक्ट मरीख की अर्ध पर हमारी अर्ध से कई गुना बड़े पहाड़ मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मरीख की माउंट ओलंपस हमारी अर्ध के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 2 गुना ज़्यादा बड़ी है। हामिम सजदा के मुताबिक अर्ध में रहने वालों के लिए इनकी अर्ध में बरकतें भी रख दी गई हैं, जो हमारी अर्ध में हमारे लिए भी मौजूद हैं। और मेरा पूरा यकीन है कि इस कायनात में जहाँ जहाँ अर्ध फैली हुई है, वहाँ वहाँ इसमें इसके रहने वालों के लिए उनकी ज़रूरत के मुताबिक बरकतें भी मौजूद होंगी। मसलन हमारी अर्ध में हमारे लिए रखी गई बरकतों में से एक बरकत वो है जिससे आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और कारोबार चल रहा है। 130,000 मिलियन टन नेचुरल गैस और 16 ट्रिलियन बैरल पेट्रोल, 16 खरब बैरल पेट्रोल जो इस वक्त भी हमारी अर्थ में मौजूद है। सैटर्न के चांद टाइटन की अर्थ में इन दोनों चीज़ों के तो पूरे पूरे समंदर रखे हुए हैं। हमारी अर्थ में छुपे 142 मिलियन कैरेट हीरे, जिनके लिए आज भी कॉन्गो यानी कि सेंट्रल अफ्रीका में लड़ाई चल रही है। कैंसरी E55 नामी अर्ध में इस कदर कार्बन है कि इसकी पूरी की पूरी सतह हीरों की एक परत से ढकी हुई है। और अर्ध के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन पर पाई जाने वाली चीज़ें इनफैक्ट इतनी अजीबोगरीब हैं कि उनके लिए साइंस को नए नाम रखने पड़े थे। अब इससे एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गई कि कम से कम हमारी ये छोटी सी ज़मीन ही अर्ध नहीं है, ये ज़मीन तो पूरी कायनात में फैली हुई अर्ध का एक छोटा सा हिस्सा है। और हामिम सजदा के मुताबिक अर्ध की तख्लीक और इसके फैला दिए जाने का ये अमल पूरे 4 दिन में हुआ था। अब ये दिन किस तरह के थे, क्या ये हमारे 24 घंटे वाले दिन थे, हम इन्हें कैसे समझ सकते हैं, वक्त की इस अजीबोगरीब हकीकत के मुतल्लिक मैं आपको पहले चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ। लेकिन इस अर्ध का फैलाव हमारी ज़मीन से लेकर कायनात के उन गुमनाम कोनों तक है जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। और सच कहूँ तो अब समझ आ रहा है कि जितनी ताकतवर तख्लीक आसमान की थी, उतनी ही अजीमुशान तख्लीक अर्ध की भी थी। अर्ध सिर्फ इस दुनिया या इस ज़मीन की बात नहीं है, अर्ध का फैलाव तो इस कायनात में हर तरफ है। लेकिन क्यों? दिस इज़ द क्वेश्चन कि आखिर अर्ध को इतने बड़े दर्जे पर क्यों फैलाया गया। इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपके सामने कुरान पाक में इस अर्ध और जहाँ जहाँ ये फैली हुई है और इसमें रहने वालों के मुतल्लिक 8 आयात रख रहा हूँ। सूरह रहमान, इस अर्ध को तमाम जानदारों के रहने के लिए फैला दिया गया है, लेकिन कौन से जानदार? सूरह लुकमान, अर्ध में तरह तरह के जानदार रह रहे हैं। सूरह अनआम, अर्ध के इन जानदारों में बिल्कुल हमारी ही तरह के ग्रोह भी हैं, यानी कि मुख्तलिफ कैटेगरीज। सूरह यासीन, हमारी तरह अर्ध में जहाँ जहाँ जानदार मौजूद हैं, वो भी हमारी तरह जोड़ों ही में तख्लीक हुए हैं। بلکہ سورہ یاسین ہی کے مطابق ارض میں جانداروں کے علاوہ ان ان چیزوں کے جوڑے بھی ہیں جنہیں ہم جانتے تک نہیں. سورہ نحل, ان جانداروں کے مختلف رنگ اور مختلف شکلیں ہیں. حامیم مسجدہ, ان مختلف رنگوں اور شکلوں کے جانداروں کی خوراکیں بھی انہی کی ارض میں جہاں وہ رہتے ہیں. یاسین, اس خوراک میں بھی ہر چیز کے جوڑے ہیں چاہے وہ اس ارض سے ہی اگی ہوئی کیوں نہ ہو. اور سورہ ہود کے مطابق وہ خوراکیں کہاں ہیں, وہ ان جانداروں تک کس طرح پہنچتی ہیں اور وہ کس مقام میں رکھی گئی ہیں, یہ سب دیکھنا اسی کے ذمہ ہے جس نے اس ارض کو اور اس میں رہنے والوں کو بنایا ہے, یعنی کہ اللہ رب العزت. سورہ شورا, جانداروں کا پوری کائنات میں پھیلی اتنی بڑی ارض میں اس طرح پھیلا دیا جانا رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. سورہ آل عمران, ارض کے رہنے والے تمام جاندار چاہیں یا نہ چاہیں اللہ ہی کے زیر حکم ہے. سورہ فتح میں تو دو مرتبہ آیا ہے کہ ہم اور ارض میں رہنے والے تمام جاندار, چاہے وہ ہماری ارض میں ہوں چاہے ارض کے کسی دور دراز کے حصے میں, وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. سورہ حشر اور سورہ حدید, کہ ارض میں رہنے والے سبھی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں, اور سورہ اسراء کے مطابق ان جانداروں کی تسبیحات ہم سمجھ بھی نہیں سکیں گے. شاید اب آپ احساس کر پائیں کہ ارض کا کانسیپٹ کس قدر عظیم ہے. یہ صرف ہماری دنیا کی بات نہیں ہے, اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ارض کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اور اس میں رہنے والے جاندار کائنات کے کس کس کونے میں موجود ہیں اور وہ کس کس تعداد میں ہیں, کیونکہ سورہ مدثر کے مطابق اللہ کے لشکروں کو سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا. اور سورہ نحل کے مطابق وہ بہت سی ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں, لیکن سورہ شورا کے مطابق اللہ جب چاہے انہیں جمع بھی کر سکتا ہے. اگر آپ نے اب تک غور سے سنا ہے تو اس سے زیادہ واضح اور کیا ثبوت ہوگا کہ انسان کے علاوہ بھی کئی طرح کی مخلوقات ارض میں موجود ہیں. فرق صرف ارض کے لفظ کو سمجھنے کا ہے. جو کچھ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ سب قرآن آیات سے ہے. ارض کے ہر حصے میں رہنے والے اللہ ہی کی مخلوق ہیں, چاہے وہ ارض کا یہ حصہ ہو جس میں ہم رہتے ہیں یا پھر کائنات کے کسی دور دراز گمنام حصے میں موجود ارض پر رہنے والی کوئی مخلوق ہو جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں. وہ سب بھی ہماری طرح خوشی یا نہ خوشی, چاہتے یا نہ چاہتے اللہ ہی کے زیر حکم ہے. وہ تسبیح بھی کرتے ہیں لیکن ہم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے, اور ہم سمجھ بھی کیسے سکتے ہیں. خدا جانے اس ارض میں رہنے والے جاندار کس قسم کی بولی بولتے ہیں, اور اگر اللہ چاہے تو ان مخلوقات کو جب چاہے جمع کر دے. اور سچ کہوں تو میری ریسرچ مجھے بتاتی ہے کہ ایسا ہونا ضرور ہے. ارض کی ایک ایسی ہی مخلوق نے ہمارے ساتھ ملنا ہے کہ جسے ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ اس چیپٹر کا موضوع نہیں ہے اس لیے فی الوقت میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بات کر رہا. اس چیپٹر کا موضوع ہے ارض کا وہ حصہ جسے ہم پلانٹ ارتھ کہتے ہیں, ہمارا گھر, یہ دنیا, ہمارا یہ نیلا سیارہ, ہماری پیاری سی نیلی دنیا, دا بلو ماربل. ہماری اس دنیا کی ابتدا 4.5 ارب سال پہلے ہوئی تھی. ایسا ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ آج تک ہمیں اس دنیا پر اس سے زیادہ پرانا ایلیمنٹ نہیں ملا. آسٹریلیا سے ملنے والے زرکون کرسٹلز, یعنی کہ دی اولڈیسٹ ایلیمنٹ آن ارتھ. لیکن 4.5 ارب سال پہلے یہ زمین کہیں سے بھی نیلی نہیں تھی, بلکہ یہ تو پہچانی بھی نہیں جاتی تھی. اس پر شدید قسم کے پتھروں کی, بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی. ہر تھوڑے عرصے بعد 2-3 کلومیٹر سائز کا ایک پتھر زمین سے ٹکراتا اور سب کچھ ختم ہو جاتا. ایک ویران, بنجر, مردہ سا سٹیرائل سیارہ جہاں کچھ بھی اگ نہیں سکتا تھا. لیکن پھر ایک معجزہ ہوا, سورہ حدید. اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے, اور ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو. اس زمین کو ایک زندگی ملی ایسے ہی ایک بڑے سے پتھر سے ٹکرانے کے بعد. اس پتھر کے ٹکرانے سے زمین کے اندر کی گیسز باہر نکل آئیں جو ایک دھوئیں کی شکل میں اس کے گرد اکٹھی ہو گئی تھیں. اب اس دھوئیں میں گیسز کے ساتھ ساتھ پانی کے بخارات بھی تھے, لہٰذا ایک بہت ہی پیاری بات ہوئی. ज़मीन का एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ, ज़मीन ठंडी होना शुरू हुई और इस धुएं में मौजूद बुखारात बारिश की तरह ज़मीन पर बरसने लगे। और फिर वो हुआ जिसका जिक्र सूरह नहल, सूरह अनकबूत और सूरह जासिया तीनों में है कि अल्लाह ही तो है जिसने आसमान से पानी और जो कुछ भी चाहा उसे उतार कर ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदा किया। इसी बारिश ने समुंदर बनाए, और सच कहूँ तो टेक्निकली इन समुंदरों को उसी वक्त फ़ौरन जम जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा सूरज भी उस वक्त वैसा नहीं था जैसा आज है। वो भी नया नया पैदा हुआ एक सितारा था जिसकी रोशनी और हिद्दत आज के मुकाबले में 30% कम थी, लेकिन फिर भी हमारे समुंदर जमे नहीं और ये एक मौजज़ा ही था। लेकिन मेरे नज़दीक ऐसा होने की वजह सूरह नमल की 61st आयत में है कि अल्लाह ने ज़मीन को करार दिया, इसे स्टेबल किया, सो इसने ज़मीन में पानियों को जारी किया, इसने पहाड़ बनाए और दो समुंदरों के दरमियान रुकावट बनाई। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसने इन पानियों में ऐसी कौन सी रुकावटें रखी थी कि इतनी सर्दी के बावजूद वो समंदर नहीं जमे, पानी जारी रहे। और इन पानियों का जारी रहना ज़रूरी भी था क्योंकि इनमें ज़िंदगी पैदा होनी थी। सूरह अंबिया के मुताबिक हर जिंदा चीज़ पानी से पैदा की गई है, इन्हीं पानियों से तो ज़िंदगी ने निकलना था। लेकिन ज़िंदगी आखिर कहते किसे हैं? इस वक्त ज़िंदगी की 123 मुख्तलिफ डेफिनेशंस मौजूद हैं, 123 मुख्तलिफ तारीफ़ें। ज़िंदगी क्या है? शायद आप सुनकर हैरान हो, लेकिन ज़िंदगी की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। फिर भी ज़िंदगी की एक तारीफ़ के जो मकबूल है, एक्सेप्टेड है, वो ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो तीन काम कर सके वो ज़िंदा कहलाती है। पहला काम कि इसके जिस्म में मेटाबॉलिज्म यानी कि किसी न किसी किस्म का केमिकल प्रोसेस होता हो। दूसरा ये कि इसके जिस्म में ख़ुद को रिपेयर करने की सलाहियत मौजूद हो। और तीसरा ये कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके यानी अपनी नस्ल बढ़ा सके। सच कहूँ तो आज तक हम ये फैसला ही नहीं कर पाए हैं कि ज़िंदगी किसे कहते हैं। लेकिन हम ज़िंदगी के मुतालिक जानते ही क्या हैं? व्हाट डू वी नो अबाउट लाइफ? इसकी कितनी अकसाम है? इसकी क्या क्या शक्लें हैं? हम तो सिर्फ़ एक ही किस्म की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं जो इस अर्द में रहती है, और इसीलिए तो हम इसे लाइफ एज वी नो इट कहते हैं। अब ये पहली मरतबा कैसे पैदा हुई थी ये बात कोई नहीं जानता। दर्जनों मॉडल्स पेश किए जा चुके हैं लेकिन किसी एक पर भी इत्तफाक नहीं। लेबॉरटरीज में हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स तजर्बात हो चुके हैं लेकिन आज तक कोई ज़िंदगी नहीं बना सका, और बना सकेगा भी नहीं, क्योंकि ज़िंदगी का मुर्दा ज़मीन से पैदा होना एक मौजज़ा था। और इस मौजज़े का जिक्र सूरह रूम में सिर्फ एक ही हस्ती से मंसूब है कि अल्लाह ही जिंदा को मुर्दा से निकालता है, वही तो ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदा करता है। ज़िंदगी सिवाय अल्लाह के और कोई पैदा कर ही नहीं सकता। अब मुर्दा ज़मीन से ज़िंदगी कैसे निकली? इसके सबसे पुराने सबूत कैनेडा में 4.25 अरब साल पुरानी काई के फॉसिल्स हैं। काई यानी कि एल्गी, जो टेक्निकली एक जानदार है। और इसी काई के 3.5 अरब साल पुराने फॉसिल्स ऑस्ट्रेलिया में है जिन्हें माइक्रोबियल मैट कहते हैं। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के दो मुख्तलिफ कोने हैं, कि जो बहुत अहम बात है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ज़िंदगी का मौजज़ा एक ही वक्त में ज़मीन पर हर तरफ हो रहा था, पानियों के अंदर, समुंदरों के नीचे, ज़मीन के जिन एलिमेंट्स से ज़िंदगी पैदा हुई इन्हें हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ कि इस ऑर्गेनिक मैटर का एक हिस्सा ग्लाइसिन सन 2009 में एक दुमदार सितारे यानी कॉमेट वाइल्ड 2 के ऊपर भी मिला था। अब वो दुमदार सितारा किस दूर दराज की ज़मीन या किस दूर दराज की अर्ध से इस अमीनो एसिड को लेकर आ रहा था ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन इससे एक बात ज़रूर साबित होती है कि इस वक्त भी कायनात के दूर दराज कोनों में कहीं ना कहीं किसी न किसी अर्ध पर ज़िंदगी पैदा हो रही है। बहरहाल ज़मीन पर पैदा हुई वो ज़िंदगी बिल्कुल भी वैसी नहीं थी कि जैसी आज हम देखते हैं। इनफैक्ट 3.5 अरब साल पहले तक तो वो अनरिकॉग्नाइजेबल थी, नाकाबिल शनाख्त सी ज़िंदगी थी, छोटे छोटे माइक्रोबियल जानदार, खूनदीनी जानदार। लेकिन फिर दो बड़ी ही शदीद सर्दियाँ आईं और इसके बाद जो ज़िंदगी पैदा हुई वो तो बिल्कुल ही एक नई ज़िंदगी थी। साइज़ में बड़ी, इसमें मसल्स यानी पट्ठे भी थे, इसमें न्यूरो सेल्स भी थे, और सबसे बड़ी बात कि ज़मीन में दरख्त पैदा होना शुरू हुए। ऐसा क्यों हुआ कोई नहीं जानता, हमें सिर्फ इतना इल्म है कि 54 करोड़ साल पहले इस ज़मीन पर एक नई ही दुनिया आबाद हो गई थी, एक नया आलम। इनफैक्ट इस पॉइंट पर सूरह वाकया की 61वीं आयत ज़रूर जहन में आती है कि हम इससे आजिज़ नहीं है कि तुम्हारी जगह तुम जैसे दूसरे पैदा कर दें और तुम्हें एक नए सिरे से उस आलम में पैदा कर दें जिससे तुम बिल्कुल बेखबर हो। वाकई अल्लाह इस पर कादिर है और ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इनफैक्ट ये तो एक मरतबा 54 करोड़ साल पहले भी हो चुका है। पहली के मुकाबले में दूसरी ज़िंदगी ज़मीन आसमान के फ़र्क के साथ पैदा हुई थी। पहली ज़िंदगी काई, बैक्टीरियाज या फिर कुछ माइक्रो जानदार, लेकिन दूसरी ज़िंदगी हड्डियों वाले जानवर, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, जबड़ों वाले, पानी में रहने वाले, खुश्की में रहने वाले, यहाँ तक के परिंदों की भी इनिशियल फॉर्म्स, इब्तदाई शक्लें। उसी वक्त सबसे पहले कीड़े बने थे जिन्हें हम ट्राइलोबाइट्स कहते हैं। इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगियों को देख कर सूरह अनकबूत की 20वीं आयत जहन में आती है कि ज़मीन में चल फिर कर देखो कि अल्लाह ने कैसे शुरू में पैदाइश की, फिर अल्लाह ही दूसरी नई पैदाइश करेगा और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। यही वो ज़िंदगी थी कि जिसमें बाद में डायनासोर्स पैदा हुए, टाइटानो बोआ जैसे बड़े बड़े इजदहे, नहायत ही खौफनाक किस्म के मेगाथीरियम चूहे, मेगालोडोन शार्क्स, बेसिलियोसॉरस नामी एक हैबतनाक मखलूक के जो गहरे समुद्रों में राज करती थी, उड़ने वाले क्विटजल डायनासोर्स, अजीबो गरीब टाइटानस टेरर बर्ड्स, लेकिन इन दो हैकल जानवरों में से आज कोई भी जिंदा नहीं है। इनफैक्ट इनमें से 90% तो आज मादूम हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन क्यों? सूरह ताहा की 128वीं आयत में एक बहुत अहम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कुरून। वैसे तो इस लफ्ज़ के आम मानी रहने की जगह या बस्तियाँ हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस अरबी लफ्ज़ करन के 4 मजीद माने हैं जिनमें से एक मानी दौर या अहद या सदियाँ भी है। यही वो लफ्ज़ है कि जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुरून उला या कुरून वस्ता, यानी शुरू के अदवार या दरमियान के अदवार वगैरह। और इसी माने के अतबार से सूरह ताहा की सायत को देखें कि हमने इनसे पहले बहुत से अहद या दौर हलाक कर दिए जिनके रहने के मुकामात में ये चलते फिरते हैं। इसमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानी है। पिछले 54 करोड़ साल में 5 मरतबा ऐसा हुआ है कि इन जानवरों के पूरे अहद या इनके रहने के मुकामात हलाक और तबाह हो गए, जिन्हें आज हम 5 मैस एक्सटिंक्शंस कहते हैं। कभी 25 करोड़ साल पहले ज़मीन के 96% जानदार मर गए और इनका दौर ख़त्म हो गया। कभी 6.5 करोड़ साल पहले ज़मीन के 75% जानदार और ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तमाम बड़े और खौफनाक जानदार डायनासोर समेत मर गए और सिर्फ वही बचे हैं कि जो ज़मीन के नीचे छोटे छोटे बिलों में छुप कर रह रहे थे। और इसके बाद ज़मीन पर एक ऐसी चीज़ पैदा हुई कि जो शायद इससे पहले कभी पैदा नहीं हुई थी। और इस चीज़ की पैदाइश का जिक्र सूरह आला में अल्लाह की तारीफ के साथ है कि अपने बुलंद रब की पाकीज़गी बयान कर जिसने तख्लीक की, जिसने सही अंदाज़ा किया और फिर राह दिखाई, वो बुलंद रब जिसने ताज़ा घास पैदा की। घास के मुतालिक आप क्या जानते हैं? यही वो घास थी जिसकी पैदाइश ने ज़मीन पर रहने वालों की फिजियोलॉजी बदल दी। अगर घास ना होती तो आज भी इस ज़मीन के ऊपर डायनासोर्स दनदनाते फिर रहे होते। लेकिन इस घास की पैदाइश के बाद गोश्त खोरों का अहद ख़त्म हो गया और ज़मीन के नीचे छुपे छोटे छोटे जानवर बाहर निकल आए, और घास की फरावानी से इनके साइज बड़े होते गए और ज़मीन पर फर्स्ट मैमल्स वजूद में आ गए। पौधे और वो दरख्त उगना शुरू हुए, वो दरख्त के जो आज हम देखने के आदी हैं, और बिल आखिर ज़मीन पर लाइफ एज वी नो इट पैदा हुई। लेकिन अर्द के बारे में एक बहुत ही पुरसरार सी आयत सूरह तलाक में है कि अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और इन्हीं की तरह ज़मीनें भी, और इसका हुक्म उनके दरमियान उतरता है। ये वो आयत है जिससे एक से ज़्यादा अर्द या 7 ज़मीनों का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ था, और इन ज़मीनों की तादाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ली जाती है कि जिसने जुल्म से एक बालिश ज़मीन भी ली तो क़्यामत के दिन इसे 7 ज़मीनों तक धसाया जाएगा। या 7 जमीनों का तोप उसके गले में डाला जाएगा। और इस हदीस में बड़ी वजाहत के साथ सब आर्दीन के अल्फाज हैं, यानी कि 7 अर्द 7 जमीनें, और ये 7ों जमीनें कैसी हैं इसका जवाब शायद कोई इंसान ना दे सके, क्योंकि हम सिर्फ एक ही अर्द को जानते हैं, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हम जिंदगी की सिर्फ एक ही किस्म को जानते हैं। जिस अर्द को हम जानते हैं वो इस कायनात में दूर दूर तक फैली हुई है, इसके फैलाव की अजमत भी आसमानों के फैलाव जैसी है। लेकिन अगर वाकई 7 जमीनें हैं तो वो हैं कहाँ? इनफैक्ट ऐसा ही एक सवाल एक रोमन बादशाह ने भी पूछा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रोमन एम्पायर, जो टेक्निकली बिजेंटियन एम्पायर थी, इसके बादशाह का नाम हेराक्लिस था, जिसे अरबी में हरकुल कहते हैं। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एतराज़ के तौर पर एक ख़त लिखा था कि आप मुझे उस जन्नत की तरफ बुला रहे हैं जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, तो फिर ये बताएं कि ऐसे में जहन्नम कहाँ गई? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब भिजवाया कि सुभान अल्लाह, जब दिन आता है तो रात कहाँ चली जाती है? इस जवाब पर हेराक्लियस के दरबार में मौजूद यहूदियों पर खामोशी छा गई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी ढटाई में बोले कि ज़रूर आपने ये बात तौरात से ली होगी। इस मुकाम पर मैं हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करना चाहूँगा कि इब्न अब्बास एक ऐसे सहाबी थे जिनके मुतालिक बुखारी और मसनद अहमद में एक बहुत अहम हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने अब्बास को अपने सीने से लगाया और इनके लिए दुआ की कि ए अल्लाह, इब्ने अब्बास को हिकमत और तफसीर का इल्म अता फरमा, यानी कि इब्ने अब्बास के इल्म और इनकी तफसीर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसी दुआ थी। अब इन्हीं इब्ने अब्बास से एक शख्स ने 7ों जमीनों के मुतालिक पूछा था, जिस पर उन्होंने कहा था कि अगर मैं इसकी तफसीर को तुम्हारे सामने बयान करूं तो तुम मानोगे ही नहीं, और ना मानने का मतलब इसे झूठा जानना है। इमाम बहेकी की किताब अल इस्माउस सिफात में इब्ने अब्बास का एक कौल है कि 7ों जमीनें, इनमें से हर एक में एक नबी है कि जिस तरह से तुम्हारे नबी है, आदम की तरह के आदम है, नूह की तरह के नूह है, इब्राहिम की तरह के इब्राहिम है, ईसा की तरह के ईसा है, और ये बात जहन में रखिएगा कि ये वो सहाबी थे जिनके इल्म और तफसीर के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। सच कहूँ तो 7 अर्द का 7 जमीनों का कॉन्सेप्ट इस कदर वसी है कि शायद इसे हम पूरी तरह से समझ ही ना पाए। हम आज तक सिर्फ अपनी ही अर्द को नहीं जान पाए, हमारी अर्द तो दूर, हम अपनी इस छोटी सी नीली दुनिया को ही मुकम्मल एक्सप्लोर नहीं कर पाए। आज भी ज़मीन का 65% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है, जिनमें से ज़्यादातर हिस्सा समुद्रों से ढका हुआ है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में 7ों आसमानों के बारे में बताया था कि हर आसमान की कंपोजिशन मुख्तलिफ है, यानी कि कोई आसमान पानी का बना हुआ है, कोई सोने का, और कोई ऐसी रोशनी का जिसे हम समझ ही नहीं सकते, वैसे यकीनन हर ज़मीन की कंपोजिशन भी मुख्तलिफ होगी। वो हमारी अर्द से बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की कोई अर्द होगी, क्योंकि सूरह तलाक की आयत में उन ही आसमानों की तरह की ज़मीनों का लफ्ज़ है। कौन जानता है कि वो दूसरी अर्द किस मटेरियल से बनी होगी? मैं आपको एक मिसाल भी देता हूँ। अब्दुल्ला बिन अबी दुनिया, जो 8वीं सदी के एक इराकी स्कॉलर थे, इनका एक कौल है कि मगरिब की तरफ एक ज़मीन है, इसकी सफ़ेदी इसका नूर है, वहाँ अल्लाह की एक मखलूक रहती है कि जिसने कभी एक लम्हे के लिए भी उसकी नाफरमानी नहीं की। लोगों ने पूछा कि क्या उनमें शैतान है? आपने कहा कि उन्हें ये इल्म नहीं कि शैतान पैदा भी किया गया है या नहीं। लोगों ने पूछा कि क्या वो इंसान है? आपने फरमाया कि इन्हें आदम की पैदाइश का भी नहीं। अब इस रिवायत की सेहत के मुतल्लिक बहस की जा सकती है, लेकिन सिर्फ एक मिनट के लिए सोचिए कि क्या ये नामुमकिन है? इज़ इट इम्पॉसिबल? वैसे तो कुरान पाक में कम से कम 7 मरतबा अल्लाह ताला की एक सिफ्त खालिक का जिक्र है, लेकिन सूरह हिजर में अल्लाह ताला की एक सिफ्त खल्लाक का भी जिक्र है। अरबी जुबान में खालिक और खल्लाक में बड़ा फ़र्क होता है। खालिक कहते हैं किसी चीज़ के बनाने वाले को, लेकिन खल्लाक कहते हैं किसी चीज़ के ओरिजिनेटर को, जिसने वो चीज़ फर्स्ट टाइम पहली मरतबा बनाई हो, जो बनाता ही चला जा रहा हो। और सूरह गाफिर के मुताबिक आसमानों और ज़मीन का तख्लीक करना तो इंसान की तख्लीक से बहुत ही बड़ा काम है। تو کیا اتنے بڑے پیمانے پر تخلیق کرنے والے خلاق کے لیے کوئی دوسری مخلوق پیدا کرنا کیا کچھ مشکل ہے؟ اتنے عظیم شان پیمانے پر بنے یہ سات آسمان اور سات زمینیں دونوں کی اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں قسمیں بھی اٹھائی ہیں، اور یہ تمام آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی کوئی انگوٹھی، اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے صحرا میں پڑی کوئی انگوٹھی۔ یہ پیمانے اس قدر عظیم ہیں کہ نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور نہ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔